और उसको पता हो कि खाने में जहर है। अब एक आदमी भूखा है, उसे खाना चाहिए, खाना सामने रखा है, लेकिन इस खाने में जहर है। अधिक मुस्लिम उन्होंने पूछा कि बताओ खाएगा या नहीं खाएगा, खाए या नहीं खाए। तो भाई मिसाल के तौर पर मुझे बहुत सख्त प्यास लग रही है और पानी मेरे सामने है, लेकिन ये पानी नहीं है, एक्चुअली जहर है, तो मैं वो जहर पी लूं अपनी प्यास बुझाने के लिए या ना पीऊं? तो मैं नहीं पीऊंगा। क्यों? मुझे पता है प्यास तो बुझे या नहीं बुझे मैं मर जाऊंगा। असलन खाना खाने का जो मजा होगा वो तो शायद आए या ना आए, लेकिन मैं मर चुका हूंगा। तो खाना खाऊंगा या नहीं खाऊंगा? नहीं खाऊंगा, किस जरूरत में नहीं खाऊंगा। इमाम ने फरमाया जिस तरह तुम जहर नहीं खाओगे, हमें गुनाह की हकीकत पता है, क्यों गुनाह करेंगे? गुनाह की हकीकत हमें पता है। मिसाल के तौर पर जैसे कि हमारे पास मौजूद है कि मसलन मौला फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स कोई पैसा लेकर आया और इमाम ने पूछा भाई ये क्या है, कहने का ये आपका है। इमाम ने पूछा मेरा क्यों है, किस हक की अदायगी के लिए? अब वो बेवकूफ को इंतहाई नादान इंसान होगा। इमाम ने फरमाया तुम्हारा ये पैसा लाना जो हमारी इस्तलाह में जिसको हम रिश्वत ताबीर करते हैं, तुम्हारा फरमाया ये जो तुम पैसा लेकर आए हो ये मेरे नजदीक सांप के थूक में लिपटा हुआ खाना है, एक ऐसा खाना है जो सांप के थूक में लिपटा हुआ है। अच्छा, अगर मेरे सामने सांप का, और उससे भी शदीद ताबीर इस्तेमाल फरमाई, फरमाई ये सांप की खाए का उल्टी किया हुआ मेरे सामने रखा है, सही है? तो अब मिसाल के तौर पर मैं एक जगह से गुजर रहा हूं और एक सांप मुझे नजर आया है, उस सांप ने कोई कह की और सामने कुछ पड़ा हुआ है, क्या मैं खा सकता हूं? गंद भी है, जहर भी है, सब कुछ है, कोई क्यों खाएगा इसे? क्या हमने समझा है कि हराम पैसा ऐसा ही है? ये तकवा है। तकवा रियलिटीज को समझ जाना है कि भाई ये जो मजा फिलहाल नजर आ रहा है, लज्जत इसके अंदर नजर आ रही है, लज्जत नहीं है असल में, इसकी हकीकत कुछ और है। जब हमें और आपको आमाल की अशिया की ऐसी हकीकत नजर आने लगे या कम से कम समझ में आने लगे, नजर ना भी आए तो कम से कम समझ में आ जाए, इसको हम तकवा कहते हैं। इसके बाद कोई गुनाह क्यों करेगा, कोई उस खाने को क्यों खाएगा? तो ये जो कमाल है अहले बैत अथार सलामुल्लाह अलैहिम अजमाइन का, वो इन हकायक को बयान कर देते हैं। दुरूद भेजेगा उनकी ज़ात मुक़द्दसा वो ये हकायक खोल के बयान कर देते हैं। और जब वो हकायक हमारे सामने बयान हो जाते हैं, अब हमारे पास दो रास्ते हैं। हम में से कुछ लोग होंगे जो स्पिरिचुअली इतने डेवलप हो जाएंगे कि उन हकीकतों को अपनी आंखों से देखने लगेंगे। अच्छा, ज्यादातर लोग इतने डेवलप नहीं होंगे कि स्पिरिचुअली उन चीजों को अपनी आंखों से देखेंगे, तो फिर क्या होगा, कम से कम पढ़े को देख कर समझ जाए। अच्छा, अगर ये भी नहीं कर सकते तो कम से कम हुक्म तो समझ में आ जाता है, हां नहीं करो ना करो, कम से कम ये तो समझ में आता है। तो मिसाल के तौर पर मुझे नहीं मालूम कि फजर की नमाज में क्या रखा है। अब एक वाक्या मेरे ज़हन में आ गया, ये उरफा बाज़ औक़ात बड़े बड़े कमाल कर देते थे, हम लोगों को समझा भी देते थे। तो मिसाल के तौर पर कहते हैं कि एक आरिफ थे, वो कहीं बैठे हुए थे, उनसे किसी ने पूछा कि भाई फजर का वक्त हो गया, तो उन्होंने कहा उनसे किसी ने पूछा फजर का वक्त हो गया है क्या, तो उन्होंने कहा कि हाँ रात के फरिश्ते ऊपर जा रहे हैं, दिन के फरिश्ते नीचे आ रहे हैं, हो गया होगा। अब भाई ये ताकतें तो हम में नहीं है कि भाई फजर का वक्त देखने के लिए हम ये देखें भाई कौन से फरिश्ते इस वक्त ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। चलो ये नहीं पता हमें फजर की रियलिटी क्या है, ये तो पता है ना कि फजर की नमाज वाजिब है, पढ़ लो, इतना तकवा तो होना चाहिए। हमसे जो डिमांड किया गया है उसके मुख्तलिफ लेवल्स हैं। अच्छा, हम सब क्या हैं? हम सब लोग जिंदगी की दौड़ में शामिल लोग हैं, एक हल्का दौड़ रहा है, एक तेज दौड़ रहा है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट जरा पहले है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट जरा बाद में। सब लोग खुदा की संग भाग रहे हैं, सब कोई चल रहा है, कोई भाग रहा है, कोई रींग रहा है, कोई रुका हुआ है। दौड़ एक ही है, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। इंशाअल्लाह परवरदिगार हमारे लिए रुजू को आसान फरमाए इंशाअल्लाह ताला। दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जल फरज। मौला अमीन मोमिनीन की अजीम शान हस्ती दो तीन तरीके से देख सकते हैं। एक दफा ये होता है कि हम जिक्र तो करें, खुदा न करें नाऊज़ बिल्लाह ताला शबाहत ना बना सकें। जिक्र तो हो गया लेकिन शबीह नहीं बनी। शबीह बनने का मतलब क्या है? शबीह बनने का मतलब यह है, बहुत छोटा सा एक पॉइंट है, आप और मैं जिंदगी गुजार रहे हैं और हमारी जिंदगियां या गुजर रही हैं या गुजर चुकी हैं, जो कुछ भी बाकी है, हमें अमीर मोमिनीन की जात से कुछ ना कुछ अपने अंदर रिफ्लेक्ट करना चाहिए। कोई एक पॉइंट सीख लें, एक पॉइंट पिक कर लें, उस एक पॉइंट को पिक करके अपने अंदर ले आए, उस पर जिंदगी गुजार दें। तो मिसाल के तौर पर उनकी इबादत, किसी ने उनकी इबादत ली है, किसी ने उनका इल्म लिया है, किसी ने उनकी शुजात ली है, किसी ने उनकी मैनेजमेंट ली है, किसी ने उनके मिसाल के तौर पर सखावत को लिया है। कोई एक पॉइंट लें, आप और मैं अमीर मोमिनीन का शिया होने के नाते उनकी जात को रिफ्लेक्ट करें सोसाइटी के अंदर, और फिर जरा सोचिए, अगर मैं और आप ये करने पर आ गए तो इस दुनिया के लिए अमीरुल मोमिनीन को पहचानना कितना आसान हो जाएगा। वो हमें देखें और हमारे अंदर कोई खूबी देखें और हमसे पूछें कि भाई ये तुम लोगों ने कहां से सीखा, और हम उन्हें बताएं कि भाई ये हमने मौला अमीरुल मोमिनीन से सीखा। शिया कम्युनिटी खुद ब खुद लीडर बन जाएगी, खुद ब खुद लीड करेंगे। बहुत अरसे पहले, मेरे ख्याल में 40 साल से भी ज्यादा, मेरे मामू शिप पे हुआ करते थे। तो वो कहने लगे कि मैं कहीं अफ्रीका गया, तो वो अफ्रीका के किसी पोर्ट के ऊपर, अब मुझे नहीं मालूम वो केप टाउन थी या वो मिसाल के तौर पर कीनिया की कोई पोर्ट थी, मैं नहीं कह सकता है तंजानिया की, तो बाहर किसी पोर्ट पे गए। कहने लगे वहां पर मैं गया तो वहां पर किसी दुकान में इस तरह का उन्होंने वाकया सुनाया, बहुत पहले मुझे भी बचपन में सुनाया था। कहने लगे कि मैं दुकान में गया तो लोगों को मैंने देखा कि वो रिस्पेक्ट दे रहे हैं। वो अच्छा, हमारे जो मामू थे वो इबादत गुजार आदमी हुआ करते थे, तो उनका जरा चेहरे मोहरे से पता चल जाता था कि हैं इबादत गुजार आदमी। तो कहने लगे बड़ी रिस्पेक्ट दे रहे हैं साहब दुकानदार वगैरह। तो कहने लगे मैं हैरान रह गया कि भाई मैं दुनिया भर में घूमता रहता हूँ, इतनी रिस्पेक्ट तो कोई नहीं देता है, ये लोग क्यों रिस्पेक्ट दे रहे हैं इतनी। तो उन्होंने पूछा कि भाई क्या मामला, कोई खास मामला है? तो उन्होंने कहा हाँ भाई, हमारे यहाँ जो है बहुत मशहूर एक केस चल रहा था, कोर्ट में एक केस चल रहा था, और वो जो जज था उसके सामने एक विटनेस आया, और दूसरा जो सामने था वो उसके पास तो कुछ नहीं था, इधर एक विटनेस आया, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये एक ही आदमी था, और हमारे रूल में जज को वर्डिक्ट देने के लिए दो विटनेस चाहिए थे, और ये एक ही आदमी था, और जज ने फिर भी वर्डिक्ट दे दिया उसकी फेवर में। तो कहने लगे भाई क्यों? कहने लगे कि ये जो खड़ा हुआ ये मुसलमान था, और जज ने कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में किसी मुसलमान को झूठ बोलते नहीं देखा, तो मैं एक ही विटनेस के ऊपर वर्डिक्ट दे दूंगा, क्योंकि मैंने मुसलमान को झूठ बोलते नहीं देखा, मैं कॉन्फिडेंट हूं कि ये जज सच बोल रहा होगा। अब आप तसव्वुर फरमाएं, अगर मौला अमीरुल मोमिनीन की शुजात, और मैं शुजात का मतलब अर्ज करने की कोशिश करूंगा, उनकी सखावत, उनका इल्म, उनका तख्वा, उनकी मुदीरियत, इसमें से कुछ हमें रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाए, शियत का पैगाम पहुंचाना कितना आसान हो जाएगा। लोग आसानी से समझ जाएंगे हाँ भाई ये वो मंबा है, ये वो सोर्स है जहां से सारी फजीलतें आ रही हैं, सारी ह्यूमन कैरेक्टर की डिग्निटीज यहां से आ रही हैं। अब शुजात क्या होती है, इसको हम अर्ज करने की कोशिश करते हैं उनके एक शागिर्द के वाक्य के जरिए से। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले मोहम्मद। थोड़ी सी हमसे ناانصافی بھی ہوئی ہے ہم سے، ایک تو عمل کرنے میں ہوئی ہے، وہ تو چڑی چھوڑ دیجئے، ایک اور ناانصافی ہم سے بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم نے امیر المومنین کی عظیم الشان شخصیت کو بہت لمیٹڈ کر کے پریزنٹ کیا ہے، بہت لمٹ دے دی اسے، ان کی پرسنالٹی میں بہت زیادہ گہرائی اور وسعت تھی، اس کا ہورائزن بہت بڑا تھا، ہم نے جو ریفلیکٹ کیا بہت چھوٹا سا تھا۔ مثال کے طور پر بھائی، معمولاً اس جنریشن میں تھوڑی حالت بہتر ہوتی جا رہی ہے، پچھلی جنریشنز میں جب امیر المومنین کے بارے میں کوئی تعریف کرنے لگتے تھے تو کیا تعریف کرتے تھے؟ کاش شجاعت ہی کرتے، شمشیر۔ اچھا، شمشیر میں ظاہر امیر المومنین کے سامنے کوئی نہیں رک سکتا تھا، عرب میں کوئی دوسرا آدمی امیر المومنین کسی شمشیر نہیں چلاتا تھا، سب کو پتا تھی یہ بات، شب ہجرت اسی لیے کسی نے حملہ نہیں کیا کہ ان کو پتا تھا کہ ہم 20 بھی ہوئے اور علی کے اوپر حملہ کیا، بچے گا کوئی نہیں، پھر یہاں پہ میدان میں اتر جاتے تھے تو بڑے بڑے پہلوان بھاگ جاتے تھے، ان کو پتا تھا کہ اب موت آئی ہے۔ پھر آیا امیر المومنین کی شخصیت کی سب سے بڑی تعریف ان کی شمشیر ہے؟ نہیں، شمشیر نہیں ہے، بلکہ جیسے کہ ہمارے بھائی نے فرمایا، شجاعت ان کی تعبیر ہے۔ اچھا، اب شجاعت کا مطلب ہم نے کیا لیا؟ ہم نے شجاعت کا، ویسے تو ترجمہ ہونا چاہیے تھا بریوری مثال کے طور پر، لیکن ہم نے شجاعت کا ترجمہ لے لیا واریئر، جنگجو۔ شجاعت جنگجو ہونا نہیں ہے، شجاعت کیا ہے؟ شجاعت یہ ہے کہ امیر المومنین نے جب کسی دشمن کو گرایا اور اس سے مقابلہ کرنے میں اس کو ہرا دیا اور اس نے ان کے منہ پر تھوک دیا، امیر المومنین کھڑے ہو گئے، کہنے ابھی نہیں ماروں گا، بھئی آپ نے اتنی مصیبت سے اتنے مقابل کو گرا لیا ہے، اب اگر آپ کھڑے ہو گئے تو دوبارہ کہاں چانس ملے گا، ابھی موقع ہے کہ مار لیں۔ انہوں نے کہا، فرمایا نہیں، ابھی نہیں ماروں گا، کیوں؟ اس نے میرے منہ پہ تھوکا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں غصے میں اس کو مار ڈالوں، نہیں، غصے میں نہیں ماروں گا، اپنے منہ پر تھوکنے کے بدلے میں نہیں ماروں گا، اس میں نہیں ماروں گا، اس میں تو میں معاف کر دوں گا، ختم ہو گیا معاملہ، اس میں معاف کیا میں نے اسے، اب دوبارہ کھڑے ہو جاؤ اور دوبارہ مقابلہ کرو۔ عزیزم، شجاعت یہ ہے، اشجع الناس من غلب ہوا، شجاع انسان وہ ہے جو اپنی ہوا و ہوس کو کنٹرول کر لے۔ اچھا، اب دیکھیے ہم سے غلطی کہاں پہ ہوئی، پہلے تو یہ کہ ہم نے امیر المومنین کو واریئر بتایا، صرف جنگجو، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، وہ جنگجو ایسے تھے کہ کوئی حساب نہیں تھا، لیکن جنگجو ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے ایک اور منظر دیکھ لیجئے، جنگ صفین، تاریخ اسلام میں ایک رات میں جتنے لوگ صفین میں مرے ہیں، تاریخ اسلام کی کسی ایک جنگ میں ایک رات میں اتنے لوگ نہیں مرے، بہت سخت ایک رات تھی، اس کا نام تھا لیلۃ الحریر، اور اس رات میں نہیں معلوم کتنے ہزار لوگ مر گئے، مختلف روایات ہیں، اب میں اس کے اوپر نہیں کہہ سکتا، لیکن اب آپ تصور کریں اس زمانے میں آبادی کتنی ہوتی تھی، لشکر کتنے ہوتے تھے، اب ایک رات میں اگر 10,000 آدمی مر جائیں، 10,000 بہت ہوتے ہیں، آپ سوچیے ایک رات میں اگر مثال کے طور پر 100 آدمی کہیں مر جاتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے، لاشوں کے لاشیں نظر آتے ہیں، ہزاروں لوگ مر جائیں ایک رات میں۔ امیر المومنین دشمن کے اوپر حملہ کرتے تھے، نعرے تکبیر لگاتے ہوئے دشمن کی صفوں میں جاتے تھے۔ اچھا، اب دیکھیے میں نے کتنی آسانی سے کہہ دیا دشمن کی صفوں میں جاتے تھے، دشمن کی صفوں میں جانے کا مطلب کیا ہے؟ بھائی ہم لوگ اگر پیکٹ کھڑے ہوں اور ہمارا ایک دشمن ہمارے درمیان سے گزرے اور ہم سب کے ہاتھ میں شمشیر ہو، بچے گا؟ کتنی شمشیر چلا لے گا، ادھر چلائے گا، ادھر چلائے گا، سامنے پیچھے، کہاں کہاں چلائے گا؟ امیر المومنین کرتے تھے، دشمن کے درمیان چلے جاتے تھے، دشمن کے درمیان میں جا کر ایسی شمشیر چلاتے تھے کوئی بچ نہیں پاتا تھا، اور ادھر سے چلے اور پورا راؤنڈ لگا کر دشمن کی ساری فارمیشن کو تتر بتر کرتے ہوئے پیچھے سے گزر کے ادھر آ گئے اور اپنے لشکر کو جوائن کر لیا۔ تو اب یہ جو آپ دائرہ بنائیں گے، یہ کئی 100 میٹر کا دائرہ بنے گا کہ امام ادھر سے جائے اندر، دشمن کو تہس نہس کرتے ہوئے ساری اس کی فارمیشن خراب کر دیتے تھے، وہاں سے ہوتے ہوئے پھر دوبارہ یہاں پر آ گئے۔ کتنی دیر لگتی تھی، کتنی دفعہ یہ کام کرتے تھے، کتنے سینکڑوں لوگوں کو اس میں مار دیا کرتے تھے، یہ ان کی شجاعت تھی۔ لیکن یہ شجاعت نہیں تھی. اس کے بعد ایک اور مسئلہ ہے, جب اس طرح مارا ایک دفعہ تشریف لائے تو ایک شخص نے احساس کیا کہ امام کو کچھ نقاہت ہو رہی ہے, بدن پہ کمزوری آ رہی ہے, ظاہر ہے آپ نے اتنی دیر جنگ کر دی تو باڈی کی انرجی جا رہی ہے. تو وہ آدمی شہد لے کر آیا. ابھی جو اصلی شہد ہوتا ہے یہ بہت ہلکا سا ہوتا ہے, پینے کے قابل ہوتا ہے, کھانے والا نہیں ہوتا, پینے والا ہوتا ہے. تو وہ شہد لے کر آیا, امام نے وہ شہد کا پیالہ پیا اور شہد کا پیالہ پی کر بتایا کہ یہ تم اس علاقے کا شہد لے کر آئے ہو. تو وہ جو آدمی تھا وہ پریشان ہو گیا, کہنے کا مولا اتنے 100 بندوں کو آپ نے مارا ہے اور نرز پہ آپ کا کنٹرول اتنا ہے کہ شہد پی کر بتا دیا کس علاقے کا ہے. اتنے لوگوں کو مارنے سے امیر المومنین کے دل پہ اتنا سا بھی لرزہ نہیں آیا, خوف نہیں آیا, اضطراب نہیں آیا. یہ ہے جنگجو. لیکن میں عرض کر رہا ہوں یہ امام کی صحیح صفت نہیں ہوئی. بس اگر شجاعت ہی لینی تھی تو ہم نے ایک لیا شمشیر چلانا, یعنی کہ تو بہت چھوٹی سی بات ہو گئی, گرچہ ان کی شمشیر بھی ایسی تھی جو کسی کے ہاتھ میں نہیں تھی. لیکن شمشیر چلانے کے بعد دوسری شجاعت کیا ہوئی کہ شمشیر ایک پہ نہیں چلائی, سینکڑوں پہ چلائی. دل میں گھبراہٹ نہیں آئی, اضطراب نہیں آیا, پریشانی نہیں آئی. شہد پی کے بتا دیا اس علاقے کی مکھیوں کو بنایا ہوا شہد ہے. اور تیسری شجاعت کیا ہوئی؟ شجاعت یہ ہوئی کہ جب دشمن نے غصہ دلا لیا تو امام نے اپنے اوپر کنٹرول کر لیا. ہمیں ڈیپتھ دینی پڑے گی امیر مومنین کی شخصیت میں. سخاوت صرف یہ نہیں ہے کہ میرے ہاتھ میں پیسہ تھا میں نے کسی کو پیسہ دے دیا, یہ سخاوت نہیں ہے. یہ تو ہم ہر ہر آدمی کر سکتا ہے جس کے ہاتھ میں ہو اور وہ دے دے, یہ کون سا مشکل کام ہے. سخاوت کسے کہتے ہیں, جود کسے کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین ایک دفعہ بی بی سیدہ طاہرہ سے ارشاد فرماتے ہیں, درود بھیجے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم, فرماتے ہیں کہ کچھ خواہش کریں تو میں آپ کے لیے محنت کر کے لاؤں. وہ کوئی بھی خواہش کر سکتی تھیں, جنت لے کر آئیں تو امیر المومنین جنت بھی لے آتے, لیکن بات تھی کہ بھائی کچھ ایسی جس میں میں محنت کر کے لاؤں. تو کہا کہ مجھے انار کی خواہش ہو رہی. اچھا, امیر المومنین کے لیے کیا مشکل تھا, ایک اشارہ کر دیتے انار آ جاتے. کہا ٹھیک ہے میں محنت کر کے لاؤں گا. گئے, مزدوری کی, محنت کی, پیسے سے انار لیے, انار لے کے گھر آ رہے تھے. راستے میں یا حضرت میسم تمار یا حضرت سلمان فارسی, ایسی اصحاب میں سے کوئی صحابی نظر آئے. پوچھا کیا حالت ہے, تم نے کھانا نہیں کھایا, بھوکے ہو؟ کہنے لگا مولا بس میں اس بات کو نہیں کہنا چاہ رہا ہوں. میں نہیں, تم بھوکے ہو اور یہ انار لو, یہ کھاؤ. اس نے بہت منع کیا, کہنے لگا نہیں میں نہیں کھاؤں گا اور میں یہ, انہوں نے فرمایا نہیں یہ لینا پڑے گا اور یہ دے کر گھر آ گئے. اب آپ تصور کر رہے ہیں, گھر آئے تو بی بی نے پوچھا کہ علی آپ انار لائے, کہاں میں لایا تھا؟ راستے میں ایک بھوکا نظر آیا, میں نے انار اسے دی تھی. گویا بی بی نے فرمایا کہ علی اگر آپ نہ دیتے نا تو میں آپ سے خفا ہو جاتی, اگر آپ نہ دیتے تو میں خفا ہو جاتی. اس طرح کا جملہ ارشاد فرمایا. عزم یہ سخاوت ہے, یہ ہے سخاوت. سخاوت یہ نہیں کہ میری جیب میں پیسہ میں نے اٹھا کے دے دیا کسی کو, سخاوت یہ ہے کہ میں نے اپنی محبت قربان کی کسی دوسرے کی خاطر. تو امیر المومنین کی شخصیت کو ہمیں بہت گہرائی میں جا کے دیکھنا پڑے گا, اور اس گہرائی میں جا کر ہمیں جو کمالات نظر آتے ہیں وہ ناقابل تصور. اچھا, یہ سب جو کریں تو لوگ جواب میں کچھ اچھائی کریں اس لیے کر رہے ہیں؟ نہیں. مالک اشتر کے نام, وقت ختم ہو رہا ہے, مالک اشتر کے نام چند جملے کہے, ان نفیس ترین, بہت نفیس جملے. ان میں سے ایک جملہ یہ تھا کہ مالک اشتر, اب میں خود روزی کی وجہ سے تھوڑی سی احتیاط کرتا ہوں ہمیشہ, گویا اس طرح فرمایا, فرمایا مالک اشتر تم لوگوں کے ساتھ اچھائی کرو گے نا تو لوگ تمہیں دھوکہ دیں گے, لیکن تم پھر بھی اچھائی کرتے رہنا. जब तुम कोई नेक काम करोगे तो लोग तुम्हारी नियत में शक करेंगे, तुम फिर भी नेक काम करते रहना। उसके बाद 5-6 नसीहतें करने के बाद कहा, क्यों मालिक अश्तर? इसलिए कि जो, अब ये जुमला बहुत इंपॉर्टेंट है, फरमाया मालिक अश्तर, जो तुम्हारे और लोगों के दरमियान है ये खत्म हो जाएगा, और जो तुम्हारे और खुदा के दरमियान है वो बाकी रहेगा। लोग तुम्हें बेवकूफ समझ रहे हैं, लोग तुम्हें गलत समझ रहे हैं, इसकी कोई हैसियत नहीं है। जो तुम खुदा के सामने हो वो बाकी रहेगा। तो जुमला मेरे जैसे आदमी को मसलन क्या सिखाता है? वो ये कि लोग तुम्हारा एहतराम करें, इससे क्या फर्क पड़ता है? लोग तुम्हारा एहतराम ना करें, इससे क्या फर्क पड़ता है? जो फर्क पड़ता है वो ये कि तुम खुदा के सामने क्या हो, तुम्हारी हैसियत खुदा के सामने क्या है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, तक़वा और परहेजगारी की जो तशरीह अहले बैत ने हमें दी है वो ये कि तुम अपने और खुदा के राब्ते को सही करो। जब इस रबते को सही करो तो लोग तुम्हें क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, इसकी परवाह नहीं करो, अपने और खुदा के मामले को सही करो। बस ये तकवा और परहेजगारी इंशाअल्लाह। परवरदिगार इंशाअल्लाह हमें तकवा के रास्ते पर चलने की सआदत नसीब फरमाए इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Chal faraj. Acha to jo stick pakadni chahiye thi is dafa wo stick bhi nahi pakdi, wo bhi ek symbolic term mein pakadni thi. Acha aap sab log जोहर की नमाज एहतियातन तो पढ़ी रहती पढ़ते ही होंगे, नहीं इसका ज़हन में रखिएगा कि हमेशा जोहर की नमाज ज़रूर एहतियातन पढ़ते रहिएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुतबा दोवम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन हबीब इलाहिल आलमीन अबिल कासिम मुहम्मद وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين وصل وسلم على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وبنت رسول الله فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وصل على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى رضى المرتضى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي درود بجاء محمد وعلى محمد على محمد وعلى حججك على عبادك وأمنائك في بلادك وصل على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وخداة المؤمنين। एक दफ़ा फिर वक्त के इमाम के हुजूर अदाए एहतराम के लिए उनके ज़हूर की ताजील की दुआ के लिए दुरूद भेजें मोहम्मद व आले मोहम्मद। इंतहाई कम वक्त में वक्त के इमाम के वजूद मुकद्दस और उनके ज़हूर के हवाले से चंद आरइस तकवा और परहेजगारी की वसीयत के साथ कि इंशाअल्लाह खुदावंद मुताल ने इसमें हमारे लिए राह निजात रखी है। चंद जुमलात के अंदर सिर्फ वक्त के इमाम की नुसरत कैसे होगी? हम इस ज़हूर के मामले में कोई किरदार कैसे अंजाम दे सकते हैं? सैकड़ों साल से गैबत हो रही है, उस गैबत को हम ख़त्म नहीं कर पाए। अब हम चाहते हैं कि इंशाअल्लाह कुछ ऐसा काम करें कि गैबत ख़त्म हो जाए। अच्छा, अब क्यों? अब इसलिए कि भाई कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो 1400 साल में नहीं हुई थी। मिसाल के तौर पर क्या, सादा सी एक बात है, कुछ चीज़ें 1400 साल में नहीं हुई थी अब हो रही हैं। वो क्या है? 1400 साल में कभी भी अहले बैत के चाहने वालों को इतनी ताकत मिली थी? अच्छा, शायद आपके सामने हिस्ट्री के कुछ पेजेस क्लियर हों और कुछ पेजेस बिल्कुल ब्लैंक हों। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे पूछूं, भाई 500 साल पहले अहले बैत के चाहने वालों के पास कोई हुकूमत थी या नहीं थी, शायद आपको ना पता हो। लेकिन मेरा चूंकि स्पेशलाइजेशन पॉलिटिकल साइंसेस में है, तो मुझे तो स्टडी करना ही पड़ेगा इस्लामिक हिस्ट्री को। तो उसको स्टडी करते हुए मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, 1400 साल में कभी भी अहले बैत के चाहने वालों को यह आलमी ताकत नहीं मिली थी जो इस वक्त मिली हुई है। यह कभी नहीं हुआ था। अच्छा, कुछ चीजों को आप निशानी के तौर पर भी देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर कि भाई मेरी उम्र खुद 50 के ऊपर है, आप माशाल्लाह यहां पे कुछ लोग होंगे जिनकी उम्र 60 के ऊपर भी होगी, तो मैं आपसे पूछता हूं कि आपने अपनी पूरी जिंदगी में इमाम के नाम पर जो दुआएं पढ़ी थी, कभी इतनी दुआएं होते देखा था? भाई बहुत सादा सी बात है, कल रात हमने कितनी दफा अल्लाहुम्मा कुल्ले वली कल हुज्जत इब्न अल हसन पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। 40 साल पहले ये दुआ लोगों को पता थी? नहीं, पता ही नहीं थी, पढ़ते कहां। अच्छा, हमने कितनी दफा इमाम का तज़किरा कल किया, कल रात मिसाल के तौर पर आमाल के अंदर 30-40 साल पहले इमाम के वजूद के हवाले से ऐसी दुआएं होती थी क्या? नहीं होती। मुझे याद, मैं शिया नशीन इलाके में रहता था और वहां पर जो भी दुआएं लोगों को पता थी वो मुझे भी पता थी। 1984 में जब मैं ईरान गया तालिब इल्म बना, तो इत्तेफाकन जिस मदरसे में मैं गया उसका पहला दिन जुम्मे का दिन था, और जुम्मे के दिन जब दुआए नुदबा पढ़ी तो मुझे जिंदगी में पहली दफा पता चला कि भाई एक दुआए नुदबा भी होती है। और ये बात है 1984 की, और मैं शिया इलाके में रह रहा था। तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, गुज़िश्ता 40 साल में 50 साल में हमने इमाम की शख्सियत के हवाले से, उनके जिक्र के हवाले से फंडामेंटल चेंज देखी है लोगों के अंदर शऊर के हवाले से। अब मिसाल के तौर पर अब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कितने माँ बाप ऐसे हैं जो ये कहते हैं भाई हमें अपने बच्चों से कुछ नहीं चाहिए, वो बुढ़ापे में हमारा आसरा बने, हमें संभालें, हमें ये सब ये नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए हमारे इमाम का साथ। पता नहीं कितने वालदैन मैं जानता हूं जो बार बार अपने बच्चों से कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए तुम लोगों से, हमें सिर्फ ये चाहिए हमारे इमाम का साथ दो, खत्म। पहले ऐसा था क्या? नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, लोगों में एक बेदारी आई है, लोगों में एक तलब आई है। अब सिर्फ एक बात रह गई, और वो क्या है? वो ये है कि हम इस काफिले में पीछे ना रह जाए, हम पीछे ना रह जाए, और ऐसा ना हो कि कुछ कौमें इतनी आगे चली जाएं और हम ये सोचते ही रह जाएं कि हमें कुछ करना है या नहीं करना। तो भाई क्या करें? सबसे पहला मसला ये कि क्या ये हमारी लाइफ की प्रायोरिटी है कि हमें इमाम का साथ देना? जिस चीज का मुझे बहुत ज्यादा डर है वो ये है कि इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। वह अनलैस लिल इंसान इल्ला मा सआ वसअयुहु सौफा युरा, अल्लाह इंसान को वो दे देता है जिसकी वो कोशिश करता है। तो मिसाल के तौर पर अगर किसी ने जिंदगी में ऑब्जेक्टिव ही यही बनाया था कि मिसाल के तौर पर मुझे अमेरिका में एक घर मिल जाए, एक दो गाड़ियां मिल जाएं, थोड़ा बिजनेस मिले, थोड़ा बैंक बैलेंस हो, ट्रू ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ यही था, मिल जाएगा। सिर्फ ये देखना पड़ेगा इमाम जमाना की नुसरत इसका ऑब्जेक्टिव है, हाँ वो नहीं मिल पाएगा। फिर ये आप और मैं उस वक्त कर पाएंगे जब यही हमारी टॉप प्रायोरिटी हो। तो मिसाल के तौर पर अगर मैंने अपने बच्चे को तैयार करना है कि वो मेरे बिजनेस को संभाले, तो मैं उससे कहता हूं बेटा आप यूनिवर्सिटी में ना कोई ऐसा सब्जेक्ट लीजिएगा जिससे आप मेरा बिजनेस संभाल सकें। जब तक मैं और आप ऐसी एक जगह पर नहीं पहुंचेंगे जब इमाम की नुसरत हमारी टॉप प्रायोरिटी हो, उस वक्त तक ये बड़ा टास्क पूरा नहीं होगा। अच्छा, पूरा नहीं होगा क्या मतलब? दूसरे पूरा कर देंगे, हम नहीं कर पाएंगे नाउज़ुबिल्लाह ताला अगर हमने गलती की। ऐसा नहीं होगा कि इमाम की तशरीफ़ आवरी हमारी मुंतजर रह जाएगी, नहीं ये सब नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं अभी जब दुनिया को उठा के देखता हूँ तो इमाम के ऐसे ऐसे चाहने वाले जिनकी लाइफ की टॉप प्रायोरिटी यही है, सैकड़ों हजारों लाखों लोग मिलते हैं, वाकन प्रायोरिटी यही है, इसी के लिए जी रहे, इसी के लिए मर रहे हैं, इसी के लिए तैयारी कर रहे हैं। और एक अजीब बात है, ये लोग के जो इमाम की नुसरत को टॉप प्रायोरिटी बनाते हैं, ये सोसाइटी के गिरे पड़े लोग नहीं है, अपनी जिंदगी के कामयाब तरीन इंसान बन जाते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि मसलन किसी ने अगर इमाम की नुसरत को टॉप प्रायोरिटी बना लिया, अब वो पता नहीं इधर उधर हकीर फकीर पड़ा हुआ है, उसकी जिंदगी में कोई सक्सेस नहीं है, कोई खुशी नहीं है। ये लोग मोस्ट सक्सेसफुल लोग हैं, इन लोग अपनी जिंदगी में कामयाब तरीन इंसान बन रहे हैं। क्यों? ओरिएंटेशन सही है, ऑब्जेक्टिव सही लिया, तो इनको फजीलतें भी मिल रही है, इनको दुनिया भी मिल रही है, इनको आखरत भी मिल रही है, और अपनी जिंदगी का ऑब्जेक्टिव भी क्लियर है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, आप और मैं अपनी प्रायोरिटीज को जज करें कि आया हमारी प्रायोरिटीज यही हैं। तो ये सिर्फ इमाम का जिक्र कर लूं शबे कदर में साल में 3 दफा 5 दफा 10 दफा, ये प्रायोरिटी नहीं है। जो मेरी लाइफ की प्रायोरिटी होती है वो मेरा लाइफ टाइम जॉब होती है, सुबह से शाम तक उसी को सोचता हूं, उसी के ऊपर मेहनत करता हूं, उसी पे प्लान करता हूं, उस पे रिसोर्सेज लगाता हूं। ये कि मैं साइड में दिन के फारिग वक्त के अंदर एक दफा दुआए सलामती पढ़ लूं, इससे कोई रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, बल्कि अच्छी चीज रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। इसको अपनी प्रायोरिटीज बनाएं, प्रायोरिटीज में काउंट करें, बल्कि टॉप प्रायोरिटी बनाएं, इसके ऊपर प्लान करें, अपने आप को तैयार करें, तब कहीं जाकर हम इंशाअल्लाह उन इमाम की नुसरत कर पाएंगे। उससे कम पे नहीं मालूम क्या नसीब में है, इंशाअल्लाह उसके बावजूद कोई ना कोई ऐसा खुदा हमें रास्ता दे देगा, मौका दे देगा कि हम इमाम के काम आ जाएं, लेकिन काफी रिस्की है। अगर वो फजीलत नहीं मिली तो क्या होगा? आखिरी जुमला, सिर्फ एक बात सोचिएगा। अब मुझे आपको बिल्कुल एक जुमले में कोई ऐसी बात कहनी है, चूंकि टाइम खत्म, वो क्या है, थोड़ा सा अपना एनालिसिस करें, आपका कैरेक्टर, आपकी पर्सनालिटी, आपकी जो भी हैबिट्स हैं सबका एनालिसिस करें। एक सवाल अपने आप से पूछें, आज इमाम तशरीफ लाए मैं एक्सेप्टेड होऊंगा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इस काम को जरूर कर लीजिएगा, कल पे नहीं छोड़िएगा, आज ही कर लें। आपको पता है आप कौन है, मुझे पता है मैं कौन हूं, मेरी पर्सनालिटी, कैरेक्टर, हैबिट्स, रिचुअल्स, जो कुछ भी है मेरे अंदर। अपने आप से एक सवाल पूछिएगा, आज इमाम तशरीफ लाए मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे, मैं उनके आह्वान अनुसार में आ गया? अगर आपका जहन कहे कि नहीं कुछ प्रॉब्लम्स हैं, क्यों इससे जान नहीं छुड़ा रहे, रिस्क क्यों ले रहे? अगर इमाम के सामने एक्सेप्टेड ना हो ना हो, ये कोई एक्सेप्टेबल चांस है क्या? ये कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है जिसको मैं एक्सेप्ट कर लूं? ये तो अनएक्सेप्टेबल है, ये तो लाइफ का फेलियर है। फिर तो अपना एक एनालिसिस करें इंशाअल्लाह, परवरदिगार नुसरत फरमाएगा। वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, और यकीनन यकीनन जो हमारे रास्ते में कोशिश करते हैं हम उनको यकीनन हिदायत देते हैं। तो आपकी तरफ से कोशिश होगी खुलूस के साथ, और खुदा की तरफ से हिदायत होगी और नुसरत होगी इंशाअल्लाह। और आप और मैं इंशाअल्लाह अपने इमाम की नुसरत के लिए उनकी खिदमत में हाजिर हो सकेंगे इंशाअल्लाह ताला। परवरदिगार से दुआ करते हैं, खुदाया इस 21 रमज़ान के दिन, मौला अमीन मोमिनीन की शहादत के दिन, हमें उनके सच्चे चाहने वालों में से करार फरमा, उनके रास्ते पर चलने वालों में से करार फरमा। ए पाक परवरदिगार, हमें और हमारी नस्लों को अहले बैत अथार अलैहिस्सलाम के ताबेदारों फरमा बरदारों में से करार फरमा। ए खुदाया वक्त के इमाम की नुसरत करने वालों में से करार फरमा। ए खुदाया वक्त के इमाम की नाम के सदक़े में, उनकी पास कीजगी और तहारत के सदक़े में, तू हमारे और हमारे तमाम मरहूमीन के गुनाहने सगीरा और कबीरा की मगफरत फरमा। اس گناہوں کی پاکیزگی کے صدقے میں ہمیں ان کا قرب اور ان کی شفاعت نصیب فرما. اے پاک پروردگار، قرآن کریم کا مہینہ ہے، ہمیں قرآن کریم سے انس اور قرآن کریم سے سیکھنے کی سعادت نصیب فرما. اے خدا، یا دعائیں تیری حجت کے لیے، جمعے کا دن ہے، قبولیت دعا کا وقت ہے، تجھے واسطہ نبی اور اولاد نبی کا اور قرآن کریم کا، سید و سردار، مولا اور آقا، امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں، ہماری نسلوں کو ان کے جانصاروں میں قرار فرما. ہماری زندگیوں کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، بجاه محمد و آله الطاهرين، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمين.